सभी भगवचन करते हैं।
नमो हरिहंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रारम नमो सर्वसारम।
छठी डाल की पांचवी डाल के बारे भावना पर अपनी चर्चा चल रही है। छह डाल किसने लिखी है? पंडित दौलत राम जी ने लिखी है उसकी पांचवी धारी। पांचवी धारी का प्रकरण कौन सा है? बारह भावनाओं का प्रकरण है। तो बारह भावनाओं के ऊपर चलो किसी से उसकी जो हमने पिछली बार छह भावनाओं के ऊपर चर्चा की थी क्लास अपनी दूसरी क्लासेस के अंदर अनित्य अचरण संसार एकत्व अन्यत्व और अतिथि इन छह भावनाओं के ऊपर चर्चा हुई थी। अब आयु की भावना के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले भावना किसे कहते हैं? मैंने लास्ट क्लास में बताया था भावना किसे कहते हैं। अच्छा चलिए भावना कितनी है यहाँ पे? बारह। कितना तो मालूम है भावना कितनी है? बारह। मैं लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि इनको बारह भावनाएं क्यों कहते हैं। क्योंकि आप बारह भावना पढ़ें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बारह भावना क्यों कहलाती है, भावना क्यों कहलाती है। भावना मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है भावना। मुझे मीठा खाने की भावना है, मतलब मुझे इच्छा है उसकी, तो मैं मेरे माइंड में वो चलता रहेगा कि मुझे मीठा खाना है या मुझे कोई भी चीज चल रही है। मुझे iPhone 7 लेना है तो मेरे मन में वो कंटिन्यूसली उसकी भावना है। किसकी भावना है? iPhone 7 की भावना है कि मुझे वो चाहिए चाहिए। तो किसी भी चीज का बारंबार विचार करना वो भावना कहलाती है। भावना इज़ अ कॉमन वर्ड, इसमें कोई लौकिक पारलौकिक चीज नहीं है। ये कॉमन वर्ड है कि किसी भी चीज की बारम्बार इच्छा करना या उसकी बारम्बार चिंतन करना, उसका नाम है भावना। जब वही चीज मोक्ष मार्ग में लगती है, जब वही चीज मोक्ष मार्ग में लगती है कि हमको इस मोक्ष की इच्छा है, किसकी इच्छा है? मुक्ति की हमको इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, परम पद की इच्छा है। तो वो जब इच्छा, मतलब उस परम पद की भावना, उस परम पद की इच्छा जब इस जीव को प्रति समय होती है तब वो भावना कहलाती है। जहाँ जिस भावना की चर्चा है वो भावना कहलाती है। अब वो भावनाएं बारह क्यों होती है? देखिए सबसे प्रथम जो बारह भावनाओं का प्रकरण आता है, आचार्य कुंभकुंड के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया वारसानुवेक्षा, जो बहुत समय बाद अभी प्राप्त हुआ है। वारसानुवेक्षा जिसका अनुवाद है बारह भावना, जिसको मूल भाषा में द्वादश अनुप्रेक्षा कहा जाता है। भावनाओं को मूल भाषा में अनुप्रेक्षा कहते हैं। मैं लास्ट क्लास में बताया था अनु प्लस प्र प्लस प्रेक्षा। अनु मतलब अनुसरण करना, अनु मतलब अनुसरण करना, प्र मतलब प्रत्यक्ष रूप से, इच्छा मतलब उसी की बार बार चिंतन करना। तो किसी भी वस्तु का बार बार चिंतन करना उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। और वो चिंतन इन बारह प्रकार में होता है, इसके लिए इनको बारह द्वादश अनुप्रेक्षा अर्थात हिंदी में उसको बारह भावना हम कहते हैं। बराबर है? भावना किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन जब वो भावना इस मोक्ष मार्ग में आती है पर इसको हम इस मोक्ष मार्ग की बारह भावनाएं कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था उन बारह भावनाओं में से छह भावनाओं का स्वरूप हमने देखा था। तो मोस्टली नाम सबने याद किए होंगे। पहली भावना, चलिए बुक में देख सकते, पहली भावना अनिश्चय, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मुझे कहा कि आपने याद किया होगा। बराबर है? दूसरा भी है उसकी भावना है। है आज हम ये छोटी चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, कोई नहीं कह रहे हैं मैं शॉर्ट रिवाइज कर दूँ, नेट से बढ़ूंगा बराबर है। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, पहली अनित्य, दूसरी पहली ये सबको याद होने की बराबर है। ये छह भावनाएं हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई भी जीव एक्स वाई जेड माना कि एक्स मैं हूँ बराबर है, एक्स भी यहाँ से चला, कहाँ से चला, इस संसार में आया, मैं इस संसार में आया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब ये मोक्ष मार्ग में कोई भी जीव प्रवेश करता है तो उसको इस मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाने के लिए और उसमें वैराग्य बढ़ाने के लिए सबसे पहले समझाया कि तू सब चीज कहती है अनित्य है, कि कोई भी चीज सदा काल तेरे साथ रहने वाली नहीं है। मतलब इस संसार में तू जितनी भी चीजें देख रहा है, मम्मी पापा आपके फोन आपकी कोई भी चीज फ्रेंड्स है सब कुछ है, कोई भी चीज हमेशा तेरे साथ रहने वाली नहीं है। तो इन चीजों से ज्यादा मोह करना अच्छा नहीं है बराबर है। अब इसने बोला चलिए कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा तो ऐसा करता हूँ कि जब मैं जाने वाला हूँगा तो मैं किसी से रक्षा करा दूंगा। मतलब कि यहाँ उसको क्या बोल दिया, सबसे ज्यादा डर डरता किसका है इंसान, मृत्यु से। सबसे ज्यादा हम किससे डरते हैं, मृत्यु से बराबर है। पक्का मृत्यु से डरते हैं, हम लोकल ट्रेन में जाते हैं बराबर है, लोकल ट्रेन में जो भी ट्रेवलिंग करता होगा मैं भी करता हूँ, ऑफिस जाते हैं ना, अगर लोकल ट्रेन मॉर्निंग का पीक और में आप लोकल ट्रेन पकड़ते हो तो क्या हालत होती है, लास्ट एक हाथ पकड़ लिया, दो उंगली पकड़ लिया, उसी से अपन चल रहे हैं। तो उसमें देखना आपने लोकल ट्रेन पकड़ी, मान लीजिए मैंने मलाड से लोकल ट्रेन पकड़ी, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड आती है, आपने गेट पकड़ा है और खाली हैंडल आपके हाथ में है, वहां से आपको रिवर्स फोर्स आ रही है तो आप वो हैंडल छोड़ोगे, अरे इतना धक्का लगा तो भी नहीं, इतनी तकलीफ हो रही है तो भी नहीं, क्यों, अगर मैंने हैंडल छोड़ा तो क्या होगा, गिर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा, मेरे लग जाएगी बराबर ना। आपने ट्रेन पकड़ी, आपने एक हैंडल पकड़ा था, वहाँ से खूब फोर्स आ रहा है, खूब धक्का आ रहा है, लोग आपके पैर पे चल रहे हैं, किसी का कुछ चुभ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उस हैंडल को क्या है पकड़े हुए हैं, क्यों, अगर मैंने वो हैंडल छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगा। उसी प्रकार यहाँ जैसे ज्ञानी जीव क्या होते हैं, ज्ञानी जीव स्वभाव को पकड़े हुए हैं, ज्ञानी जीव ने क्या किया है, स्वभाव को पकड़ रखा है, जो मेरा स्वभाव है उसको पकड़ा हुआ है। अब उसमें चाहे कितने भी विकल्प आए, दूसरे लोग कितना भी उसको डिगाने की कोशिश करें, उसको भटकाने की कोशिश करें, लेकिन वो अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने वो छोड़ा मैं फिर जाऊंगा, मैं किसी गति में भटक जाऊंगा बराबर है। तो सबसे ज्यादा डर किसका है, जीव को, मृत्यु का। उस मृत्यु के डर को यहाँ पर हटाकर क्या बोला कि सब चीज अनित्य है, सबको जाना है, तो मरने से तुम मत डरो, जो इस जगह आया है वो जाएगा ही जाएगा, जब तुम्हारी आयु होगी तुम जाओगे, तो मरने से मत डरो। उसने बोला चलो ठीक है कि मरना तो है ही, तो फिर ऐसा करता हूँ जब मेरी मृत्यु आएगी तो मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा, है मैं किसी दिन शरण में, मतलब अच्छे से अच्छा रिलायंस के हॉस्पिटल में, धीरूभाई अंबानी में जाऊंगा तो वहाँ तो अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तो मुझे वो मरने से बचा देंगे। ऐसे करते ना सब लोग, कौन जाएगा गवर्नमेंट में ऊपर हॉस्पिटल, ऊपर नहीं जाते ना, कहाँ जाते हैं, अंबानी जाएंगे, रिलायंस, मतलब अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट लेने जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें क्या लगता है कि वो हमको क्या करेंगे बचा देंगे, वो हमको क्या करेंगे बचा लेंगे। तो वो बात यहाँ बताई, अशरण, कोई भी तुझे शरणभूत नहीं है, कोई भी तुझे बचाने में समर्थ नहीं है, जब तेरी आयु आएगी उस समय चाहे वीरेंद्र भगवान भी उतर कर आ जाए तो भी तुझे बचाने में समर्थ नहीं है बराबर है। फिर जब कोई मुझे बचा ही नहीं सकता है तो चलो कोई बात नहीं, जब तक संसार में रहते हैं तब तक मजे करें, मरना है कोई बताने वाला नहीं है, तो जितना टाइम मिला उतना टाइम मजे करें, खूब खाए पिए मस्ती मारे मजे करें। तो उसके लिए यहाँ पे बताया कि ये संसार का स्वरूप ही खराब है, मतलब इस संसार में जो तू सुख सोच रहा है वो सुख वास्तविक सुख है नहीं। इसे ना अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर आदि संसार को क्यों छोड़ते, क्यों उसको छोड़ते जाते, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक गाड़ी एक घर। तीर्थंकर चक्रवर्ती के पास तो चक्रवर्ती का 40,000 रानिया, इतने हाथी इतने घोड़े इतने पैदल इतनी संपदा, फिर भी उन्होंने संसार को छोड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि संसार में जिस चीज में हम सुख मान रहे हैं वो सुख वास्तविक सुख नहीं है। हमें लगता है जो जो पंखा है जो एसी हमें गर्मियों में अच्छा लगता है वही हमें सर्दियों में बुरा लगता है, जो भोजन हमें सर्दियों में अच्छा लगता है वही गर्मी में हमें बुरे लगते हैं। तो ये संसार में जो हम सुख मान रहे हैं वो संसार वास्तव में सुख रूप है ही नहीं। और संसार के बाद में आया ये तत्व कि चलो संसार में सुख नहीं है, लेकिन जितने मेरे घर बार के लोग हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरा सन बहुत अच्छा है, अरे मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरा बिल्कुल फास्ट फ्रेंड है, हम तो बिल्कुल ऐसे है बिल्कुल बड़े जैसे। तो बिल्कुल तो यहाँ उसको बताया कि तेरा स्वरूप क्या है, एक तत्व मतलब एक, तू अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, कोई भी तेरे साथ में जाने वाला नहीं है। तो तू अकेला है तो इन बाकी सबके साथ तू संबंध मतलब मोह को कम कर, बराबर है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने उसको ग्रुप में देखा था। एकत्व के बाद क्या आया फिर, अन्यत्व। जब उसको एकत्व भावना बताई कि तू कैसा है, अकेला है, ये पिता तेरे नहीं है, ये स्त्री तेरी नहीं है, ये पुत्र तेरे नहीं है, मित्र तेरे नहीं है, तो उसको क्या हुआ, उसको द्वेष हो गया। क्या हो गया कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है तो मैं उनको छोड़ दूँ, बराबर है ना। जब कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है तो मैं क्यों इनके साथ रहूँ, मैं इनको छोड़ दूँ। तो ऐसी द्वेष भावना हमारे मन में नहीं आए, उसके लिए कहा अन्यत्व भावना, कि वो तेरे साथ देने में समर्थ ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो साथ देने वाला नहीं है, बल्कि वो साथ देने में समर्थ ही नहीं है। क्यों नहीं है, अन्यत्व भावना, कि सब कैसे हैं, अन्य अन्य है, वो अपने समय से आए हैं, तुम अपने समय से आए हो, अपने समय से जाएंगे, तुम अपने समय से जाओगे, जितने संयोग है वो सभी अन्यत्व को एकत्व और अन्यत्व को लिए हुए हैं, इसलिए तू एक रूप है और बाकी सब तेरे से अलग है, भिन्न भिन्न है, बराबर है। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या किया, सब संयोगों से हटा के शरीर पे लेके आए, बिल्कुल बराबर है, सब संयोग हटा दिए, धर्म हटा दिया, स्त्री पुत्र सब हटा दिए, अन्य लास्ट में क्या बचा, शरीर बचा। शरीर से भिन्नता बताने के लिए उसको बताया अशुचि, अशुचि मतलब अपवित्र, कि जिस शरीर से तू राग करता है वो शरीर भी कैसा है, अपवित्र है। लास्ट में उदाहरण दिया ना कि आप मॉर्निंग में कितने टाइम 100 टाइम आप ब्रश करो, मॉर्निंग में हम 1 टाइम करते ना, दिन में 2 टाइम करते, आप 100 टाइम ब्रश करो और हलवे बादाम के हलवे की चम्मच को आपके मुंह में रखो, सिर्फ रखना है, खाना नहीं है, स्पेक्ट नहीं करना है, रखो और निकाल के सामने वाले को दे दो कि खा लो, खाएगा फिर खाएगा, क्या करेगा, अरे ऐसा करेगा ना। जो आप बोलो ना मैंने तो 100 टाइम ब्रश किया है, मैं तो बिल्कुल साफ है, तो साफ है कि नहीं, क्या हुआ, वो बादाम का हलवा जिसमें हमने ड्राई फ्रूट डाल के जो हलवा बनाया वो हलवे को एकदम से 1 सेकंड में क्या हो गया, पहले जो हलवा बहुत अच्छा लग रहा था वो हलवे को 1 सेकंड में क्या हुआ, क्या हुआ, खाली वो शरीर के संपर्क में आया, टच में क्या, खाली मुंह में रख के उसको दिया। तो ये शरीर का स्वरूप ही ऐसा है कि इस शरीर के संयोग में जितनी भी वस्तुएं आती है, अच्छी से अच्छी वस्तुएं जो कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो तू इस शरीर के लिए जो दिन भर प्रयत्न करता है वो प्रयत्न भी करना तेरे लिए कोई भी सार्थक नहीं है। तो इस प्रकार ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठी इन 6 भावनाओं में जीव के वैराग्य की वृद्धि करने के लिए 6 भावनाएं बताई है, बराबर है, समझ में आया। पहली छह भाव में किसके लिए है, वैराग्य की वृद्धि करने के लिए पहली छह भाव में है। नाम एक बार फिर से, पहली पहली, दूसरी तीसरी, चौथी पांचवी, छठी छठी पांचवी, चौथी तीसरी दूसरी पहली छठी नाम बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए, रात में उठा कर पूछ ले तो हाँ अपना नाम कैसे याद होता है। और लोग सो रहे और आपका नाम भी याद ले तो बाकी 99 उधर नहीं, आप लोगों में हाँ मिलेंगे, ऐसे ही सब याद होना चाहिए। और इसके बाद में आती है 7 नंबर आश्रम भावना, बराबर है, आश्रम भावना। अरे 7 तत्व के नाम तो सबको याद है, बराबर है। पहला, दूसरा बहुत ब्रदर नाता है, 7 तत्व, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर काम करे सभी, पहला दूसरा तीसरा सात। इसमें आश्रम के बाद कौन सी भावना है, कमर भावना। 12 भावनाओं में आश्रम के बाद कमर है, तो यहाँ 12 भावनाओं में बंद क्यों नहीं लिया, तो बंद की भावना इस भावना के अंदर आती है, बराबर है। जो अपन अब आश्रम भावना की चर्चा करेंगे तो उसमें आश्रम प्लस बंद और इनके जो दो भेद करते हैं पुण्य आश्रम और पाप आश्रम, इसकी चर्चा हम इस भावना के अंदर पूरी करेंगे, बराबर है। चलिए आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। सभी 6 नंबर की जो भावना है पांचवी राग में आश्रम भावना, उसको एक बार पढ़िए फिर इसका अर्थ अपन करते हैं।
जो लोगों ने की सफलाई पाते हैं आश्रम भाई, आश्रम दुख कार धनेरे
हे भव्य जी, जोगन की जे चंचलता छे तेना थी आश्रय थाय छे अने ते आश्रय घणु दुख करनार छे, माटे समझदार तेने दूर करे छे। भावार्थी बोलता हूँ, विकारी शुभाशुभ भाव रूप जे अरूपी अवस्था जीव में थाय छे ते भावाचर छे, अने ते समय नवीन कर्म योग रसपणों स्वयं स्वतः आवु अर्थात आत्मा ने साथ एक क्षेत्र आगमन थे द्रव्याचर है, जीव न अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। लेकिन आश्रम किसे कहते हैं, हमने 7 तत्व के पास में पढ़ा, आश्रम किसे कहते हैं, आना किसका आना, कर्म का आना, घर में मेहमान का आना नहीं, किसका आना, कर्मों का आना। क्योंकि यहाँ चर्चा किसकी चल रही है, जीव के मोक्ष रूपी प्रयोजन की चर्चा चल रही है, तो बराबर है किसका आना, कर्म का आना। कहाँ पे आना, क्लियर होना चाहिए ना, कर्म मंदिर में तो नहीं आएंगे, कर्म कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे, आत्मा में। अच्छा हमें दुखी किसने किया है, शरीर ने दुखी किया ना, तो कल शरीर हटा देते है ना, किसने दुखी, शरीर क्या करेगा, शरीर दुखी करता है तो फिर मरने के बाद तो बॉडी कुछ नहीं करती है, तो दुख क्या होता है, दुख किसने किया हमें, हम बोलते हैं ना किसने दुखी किया, कर्मों ने हमें दुखी किया, बराबर ना, हमें कर्मों ने दुखी किया है। तो वास्तव में कर्म कहाँ आ रहे, कर्म आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप में जो संयोगी संबंध है, जो एक क्षेत्र संबंध रूप है, जो मैंने कहा ना लास्ट क्लास में कि हम संबंधों की जब चर्चा करेंगे तब इसको और क्लियर करेंगे, कि वो जो कर्म हमारे साथ आते हैं, जो हमारे साथ संयोग रूप में संबंधित होते हैं, तो उन संयोगों के कारण, उस संयोग कारण हमें बाकी सब चीजें मिलती है और उसमें हम सुख दुख मानते हैं, सुखावास दुखावास रूप हम मानते हैं। तो सबसे पहला कि कर्म हमारे अंदर आए, बराबर है, तो कर्म आए तो हमारे कर्म के आने के कारण हमारे जो कार्य हुए वो दो रूप में होते हैं, या तो पुण्य रूप में हुए या हुए पाप रूप में। पुण्य का फल हमको शुभ रूप में हुआ और पाप का फल हमको अशुभ रूप में, दुख रूप में हुआ, बराबर है। तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि पुण्य अच्छा है कि पाप अच्छा है, पक्का? कल से मंदिर आना, मंदिर आना। कौन सा कार्य है, पुण्य का कार्य पाप का कार्य है, पक्का डिसाइड कर लो। मंदिर आना किसका कार्य है, पुण्य का पाप का? अरे ये तो बोलो, पुण्य का पाप का? पुण्य का, सब ऐसे कंफ्यूज हो गए, कुछ भूल भी आ जाएगी। मंदिर आना किसका कार्य है, पुण्य का कार्य, बराबर है, पक्का। तो पुण्य बुरा है कि अच्छा है? अच्छा देखो, अब आगे निकल आए, बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं। हाँ, पुण्य कैसा है? देखिए वास्तव में, अब जो अपन चर्चा करेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा हमें क्लियर करना है कि पुण्य कैसा है। वास्तव में बंध का कारण होने के कारण है तो बुरा, लेकिन जब तक हमारी अवस्था उस शुद्ध की तरफ नहीं जाती है, उस शुद्ध तक जब तक हम नहीं पहुंचते हैं, तब तक अवलंबन रूप में ये शुभ भाव, ये पुण्य भाव हमारे लिए कार्यकारी है। इतना तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो कम से कम हम ये जो रास्ता है, इस पुण्य के शुभ भाव के रास्ते से धीरे धीरे चलते रहे तो हमारे भाव और निरंतर प्रति आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें अब दो चीज आती है, एक पुण्य आश्रम और एक पाप आश्रम, बराबर है। फल रूप में देखा जाए, मोक्ष मारे के फल रूप में देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान देना, कठिन भी लगेगा लेकिन समझना। नाटक समाचार ने एक उदाहरण दिया है चांडाली के पुत्र का, बराबर है। मोस्टली मैंने शायद एक बार क्लास में बहुत बताया भी आपको, चांडाली में तो समस्या आजकल तो नहीं होते हैं, कहीं होता भी होगा। पहले जब फांसी दी जाती थी ना, जेलों के अंदर जो फांसी दी जाती थी, तो एक वो काला आता और रहता ना, वो उसको दबाता है और वो फांसी पे लटक जाता है, आपने किसी मूवी में देखा होगा, उसे बोलते हैं चांडाल, बराबर है। मतलब पहले जो बलि देने का या फिर मारने का जो ऑफिशियल नियुक्त जिसे किया जाता था उसे चांडाल कहते थे, बराबर है। चांडाल की भाई चांडाली, ठीक है, ऐसा बोलते ना, ऐसे ऐसा, तो ऐसा। तो चांडाल के जैसे कोई दो पुत्र हुए, जैसे कोई चांडाली जुगल पुत्र जन तीन, क्या किए, जुड़वा पुत्र उसके हुए, एक दियो बामन के एक घर राखे है। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुए, एक तो कौन ले गया, ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण ले गया उत्पन्न होते ही, और एक उसने अपने घर पे रखा। जैसे कोई चांडाली जुगल पुत्र जन तीन, एक दियो बामन के एक घर राखे है। बामन सहायो तीन मध्य मास त्याग तीनों। अब ब्राह्मण के घर पे तो मध्य मास का यूज होता ही नहीं, तो ब्राह्मण सहायो, वो लड़का क्या कहा है, ब्राह्मण कहा, क्यों, ब्राह्मण सहायो तीन मध्य मास त्याग तीनों, चांडाले सहायो तीन मध्य मास त्याग्यो है। और जो चांडाली के घर पे रहा लड़का, उसने यदि वो सब खाते थे तो वो उसने भी खाया और वो चांडाल कहा। कैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, वैसे एक वेदनीय कर्म, आज कर्म है ना, उसमें वेदनीय कर्म के जुगल पुत्र, जुगल मतलब जुड़वा, कैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पुण्य एक पाप नामे भिन्न भाष्यो है। दो महा दौड़ धूप दो कर्म बंधे रूप, या से जाने वंते नहीं को अभिलाष्यो है। कि वैसे ही वेदनीय कर्म के लिए दो जुड़वा पुत्र हैं, एक का नाम पुण्य है, एक का नाम पाप है, लेकिन दोनों का ही फल कैसा है, बंधन रूप है, दोनों ही दौड़ धूप रूप है। इसके लिए ज्ञानी जी, सम्यक दृष्टि जी, दोनों में से किसी की भी इच्छा करते नहीं है। समझ में आया, पुत्र दोनों किसके थे, चांडाल के थे, पुत्र दोनों एक ही माते थे, लेकिन आचरण एक ब्राह्मण के घर से गया तो वो ब्राह्मण कहलाया, तो लोग क्या कहते हैं कि ये तो कैसा है, अच्छा है, ये कैसा है, अच्छा है, और ये कैसा है, बुरा है। लेकिन दोनों पुत्र एक ही माते हैं, तो वैसे ही पुण्य को हम अच्छा कहते हैं, पाप को हम बुरा कहते हैं, लेकिन दोनों एक ही कर्म के भेद हैं। चाहे आप और विस्तार में देखो तो समय सार में कहा ना, चाहे लोहे की बेड़ी से बंधो, चाहे सोने की बेड़ी से बंधो, बराबर है। आपको कोई पकड़ ले और आपको ऑप्शन दे, बताओ किससे बंधना पसंद करोगे, है ना? आपके पास यह टू चॉइस, किससे बंधना पसंद करोगे बोलो, लोहे की बेड़ी से कि सोने की से? अपन लगे ना, अरे लोहे का भाव तो 10 रुपए किलो और सोने का भाव ग्राम में भी 30,000 रुपए पर 10 ग्राम का, मतलब सोने का 30,000-32,000 का सोने का ग्राम, तो बंधना तो सोने की से ही। किससे बंधना अच्छा लगेगा? किसी से नहीं। उसी प्रकार इन चीजों में तो हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हाँ भैया दोनों से ही बंधन है, तो दोनों से नहीं बंधना। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोल कहते हैं कि ये जो आश्रम है जिसके दो भेद के, पापाश्रम और पुण्य आश्रम, ये वास्तव में दोनों ही दुख रूप है, दोनों ही बंधन का कारण है। इसके लिए ज्ञानी जीव तो ना पुण्य की इच्छा करते हैं और ना पाप की इच्छा करते हैं, वो स्वतः अपना कार्य करते हैं और उनके कार्य में पुण्य आदि जो सामग्री है वो उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये कहते ना कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव को तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, एक मतलब बिल्कुल अंदर की बात है कि मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा मतलब विकल्प, इच्छा क्या हो गई, विकल्प हो गया, और विकल्प तो यहाँ मोक्ष मार्ग में विकल्प का तो कार्य ही नहीं है कि वो तो सहज हो जाता है, वो कार्य तो सहज हो जाता है, हम तो मात्र अपने स्वभाव में लीन है, ऐसी बात है। चलिए क्या बात चल रही थी, आश्रय भावना की। क्या कहा आश्रय भावना में, कि जब पहले की 6 भावनाओं में शरीर से वैराग्य कराया कि ये जो शरीर संयोग आदि है ये कोई भी तेरा साथ देने वाले नहीं है, तो तू इनसे क्या कर, दूर हो इनसे, धीरे धीरे अपने मोह को कम कर। अब जब ये मोह से को कम किया, जब ये समझा, अब अच्छा ये बताइए 6 भावना के बाद ये आश्रय भावना क्यों रखी, पहले क्यों नहीं रखी? लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन, 6 के बाद ही क्यों रखी? सबसे पहले आश्रम से शुरू करते ना, मोक्ष 6 में तो बाहर की बात ही की ना, अपनी बात तो अब आ रही है, तो पहली भावना आश्रम क्यों नहीं रखी? ये खराब, मतलब बात सही है, बात क्या थी कि पहले आप जैसे कोई गुस्से में आ रहा है, बिल्कुल 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 गुस्सा है, इतना तेज गुस्सा है, और आप उसको उसी गुस्से में कुछ और बोल दो तो वो क्या होगा, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, उसका गुस्सा ही और बढ़ेगा। तो पहले क्या करना चाहिए, कोई गुस्से में आया तो उसको शांति से बिठाओ, कूलर एसी की हवा खिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, जब वो थोड़ा शांत हो जाए उसके बाद आप अपनी बात रखो। तो उसी प्रकार की जीव पहले इतना दुखी 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 और उसमें आप सीधे उसको मतलब बाहर इन चीजों में घुसा हुआ है, संसार के चक्र में वो बिल्कुल जकड़ा हुआ है, आप उसको पहले उस चक्र को तो समझाओ नहीं और सीधा बोलो कि चलो तुम्हारे में तो कर्म इतने हैं और ये हादसा और ये बंद, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो पहले धीरे धीरे उसको इन चीजों से दूर किया, ये जितने भी अनित्य समझाया, आचरण समझाया, इस देह की अपवित्रता को समझाया, अपनी एकत्वपने को समझाया, जब ये जीव का ज्ञान थोड़ा निर्मल हुआ कि हाँ वास्तव में ये संसार का स्वरूप मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो इनसे कुछ भिन्न है, जब जीव को ऐसा लगा, जब वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ, तब जाके उसको आश्रय भावना पे लाकर उसको समझाया। क्या समझाया, कि अब ये जो शरीर आदि से तो भिन्नता बताई, लेकिन जिसको तू अपना मान रहा है ये कर्म आदि के जो संयोग हैं, वो कर्म आदि भी तेरे में नहीं है। मैं लास्ट क्लास में उदाहरण देना घड़ी का, कि एक घड़ी पानी में पड़ी है और एक घड़ी पानी से बाहर पड़ी है, तो जो घड़ी पानी से बाहर पड़ी है उस घड़ी को तो पानी में कभी छुआ ही नहीं, लेकिन जो घड़ी पानी के अंदर पड़ी है उस घड़ी को भी पानी में छुआ नहीं, बराबर ना? जो घड़ी पानी से बाहर पड़ी है उसको तो पानी ने छुआ ही नहीं, लेकिन जो घड़ी पानी के अंदर पड़ी है घड़ी वक्त उसको भी पानी ने नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि पानी अगर उसको छू ले तो वो घड़ी खराब हो जाए। वाटर प्रूफ क्या होता है कि घड़ी में पानी प्रवेश ही नहीं करेगा, उसको वाटर प्रूफ बोलते ना। वाटर प्रूफ घड़ी क्या कि इसमें कितना ही पानी में डालो लेकिन इस घड़ी की मशीन इतनी सॉलिड है कि उसमें पानी प्रवेश ही नहीं करेगा। उसी प्रकार ये जीव का स्वरूप इतना सॉलिड है कि वो अनादि काल से कर्मों के बीच में पड़ा हुआ है, कर्मों के साथ आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी इसी जीव के स्वरूप में कभी कर्म आदि का प्रवेश आज तक हुआ नहीं। जुगल जी की भाषा में कहें, आज जुगल जी का नाम सुना होगा आपने, इनकी देवसाज गुरु पूजन आप करते हैं सब, केवल रति चरणों वाले जिनकी बारे भावनाएं भी बहुत अच्छी है, भाव वन्य जीव, उनकी भाषा में कहें तो ये जो जीव है वो एक आत्मा का स्वभाव एक ऐसा अभेद किला, एक ऐसा अभेद फोर्ट है कि उस फोर्ट पे कितने ही दुश्मन सेना आक्रमण कर दे, तोपों से कैसे ही आक्रमण कर दे, लेकिन एक भी दुश्मन उस किले के अंदर कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता। ऐसा अभेद किला जिसको कभी भेदा नहीं जा सकता, ऐसा अभेद किला ये क्या है? अपनी आत्मा है। अरे बाहुबली देखी, उसके अंदर दिखा ना कि जिसको दुश्मन कभी मार ही ना सके, वो दुश्मन कभी जिसको कोई इफेक्ट ना कर सके, ऐसा कि वास्तविक स्वरूप जो है अपना वो ऐसा ऐसा हमारा बल है, ऐसा हमारा वास्तविक स्वरूप है। बराबर है। तो ये जो पुण्य आश्रम पाप आश्रम जो कर्म आदि है इसमें तीनों चीजें साथ ले लेना है, आश्रम लेना है, बंद लेना है, और आश्रम से जो दो भेद किए पुण्य आश्रम और पाप आश्रम, ये तीनों चीज एक आश्रम भावना के अंदर हमको लेनी है कि अब कर्म के ऊपर इनकी चर्चा की है, फिर धीरे धीरे कर्म आदि से हटाकर जो फिर निद्रा से और अंत में धर्म भावना पूर्ण मोक्ष की चर्चा अपन करेंगे। बराबर है, यहाँ तक क्लियर? किसी को कुछ पूछना? चले आगे। देखिए एक बार वापस से इसमें नीचे जो पुण्य लिखा है वहाँ से पढ़ते हैं। पुण्य पाप दे आश्रय ने बंद न भेद से। अच्छा, बंद का भी भेद है पुण्य या पाप, बराबर है कि नहीं? हमने पुण्य आश्रम और पाप आश्रम तो सुना है, आश्रम के दो भेद पुण्य आश्रम पाप आश्रम, बंद के दो भेद सुने हैं, पुण्य बंद और पाप बंद। पुण्य आश्रम के कारण से होने वाला बंद पुण्य बंद, पाप आश्रम के कारण से होने वाला बंद पाप बंद, बराबर है। पुण्य पाप दे आश्रम ने बंद ना भेद से। पुण्य दया दान भक्ति पूजा व्रत वगैरह शुभ भाव सरागी जीव ने हुए से ते अरूपी अशुद्ध भाव से अनेते भाव पुण्य से अनेते समय, यहाँ तक तो हुआ आश्रम की बात, अनेते समय नवीन कर्म योग रज कणों नो स्वयं स्वतः आगु अर्थात आत्मा ने साथे एक क्षेत्र में आगमन करू ते द्रव्य पुण्य से तेना जीवना अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र से। बराबर है। पाप उसी जैसे पुण्य वैसे ही पाप, हिंसा असत्य चोरी इत्यादि अशुभ भाव से भाव पाप से अनुते समय कर्म योग पुद्गलो नो आगमन थवू ते द्रव्य पाप से तेमा जीवना अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र से। अब यहाँ दो बात आई, एक द्रव्य पुण्य और एक भाव पुण्य। समझ में आया इसमें पढ़ने में अंतर क्या है? भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य में क्या अंतर है? अभी आपने पढ़ा ना, अरूपी अशुद्ध भाव ये भाव पुण्य है। कौन से भाव? दया दान भक्ति पूजा आदि के जो भाव है वो भाव तो भाव पुण्य है, लेकिन उस भाव के कारण जो कर्म हमारे अंदर आ रहे हैं, जो कर्म हमारे अंदर बन रहे हैं वो द्रव्य पुण्य है। भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य, भाव पुण्य में कर्म नहीं आने, भाव पुण्य में मात्र जीव को भाव है। कौन सा भाव? दया दान व्रत आदि का जो भाव है वो भाव पुण्य की श्रेणी में जाता है, और भाव पुण्य के कारण जो कर्म आदि का आना है वो द्रव्य पुण्य है। उसी प्रकार पाप जो हमारे हिंसा असत्य चोरी आदि के जो भाव है वो हो गया भाव पाप, और उन भाव पाप के कारण जो कर्म का आना है वो हो गया बराबर है। द्रव और भाव का अंतर समझ में आया, भाव में मात्र भाव है और क्रिया जो है वो द्रव्य में है। और अपन क्लियर मतलब आसान करें, भाव होना वो भाव में आया और उस भाव का परिणमन होना, उस भाव का क्रिया रूप में परिणमन होना वो क्रिया में आया। मुझे आपके मारने के भाव हुए बराबर है, मुझे आपको मारने के भाव हुए ये तो भाव तक हुआ, लेकिन मैंने आपको मारा वो क्या हुई क्रिया हुई, द्रव्य रूप में वो क्रिया हुई बराबर है। मैं आपको गोली मारूं ऐसे मुझे भाव हुए, लेकिन उस भाव में मुझे पुलिस पकड़ेगी। मैं आपको गोली से मार दूं उड़ा दूं ऐसे मुझे भाव हुए तो पुलिस मुझे पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी बराबर है, लेकिन मैं आपको गोली मार दूं तो मुझे पुलिस पकड़ेगी पकड़ेगी बराबर है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य, यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था मात्र द्रव्य पे टिकती है बराबर है। जो लौकिक में जो न्याय नीति की व्यवस्था है वो मात्र द्रव्य रूप को ही देखती है, लेकिन जैन दर्शन की जो न्याय कर्म व्यवस्था है वो द्रव्य और भाव दोनों को देखती है बराबर है। मुझे आपको गोली मारने के भाव हुए तो मुझे कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मुझे आपको गोली मारने के भाव हुए तो मुझे कर्म का बंधन होगा कि नहीं होगा? तो जो जैन दर्शन की व्यवस्था है वो मात्र द्रव्य को नहीं देखती है, वो भाव से भाव के लिए होते हैं, भाव प्रधान है, सबसे पहले भाव को देखा जाता है। बाहर की क्रिया है, आप उसको जब तक गोली नहीं मारोगे तब तक आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, या मान लो आपने गोली मारी वो बच गया तो भी पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि आपकी क्रिया तो थी, आपने द्रव्य रूप में क्रिया तो की। तो वो बाहर की न्याय व्यवस्था तो उस बाहर की क्रिया को देखेगी, लेकिन जैन दर्शन की कर्म व्यवस्था, आप भाव भी करेंगे मारने का तो भी आपको उस जाति से कर्म का बंधन होगा होगा और होगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपने ट्रैफिक का रूल तोड़ा, 50 का नोट पकड़ाया और आप आगे बढ़ गए, और आपने क्या तोड़ा, सिग्नल तोड़ा और आगे जो खड़ा था उसको 50 का नोट, आजकल 50 में नहीं चलता है, 100 का नोट पकड़ाया और आप आगे बढ़ गए, वहाँ तो आप छूट जाओगे। लेकिन जैन दर्शन की जो कर्म की व्यवस्था है वहाँ नोट चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ व्यक्ति की व्यवस्था ही नहीं है, ये जितना भी गलत काम होता है वो कहाँ होगा, जहाँ पर व्यक्ति व्यवस्था होगी, जहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, कौन लेगा नोट, कौन लेगा, व्यक्ति लेगा ना। जहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा वहीं पर कुछ गलत होने की संभावना है, जहाँ व्यक्ति है ही नहीं, जहाँ वस्तु व्यवस्था है वहाँ कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो वस्तु सिद्धांत के ऊपर चलती है। वो हमारा जो जैन दर्शन है वो व्यक्तिवाद के ऊपर चलता ही नहीं है, वहाँ तो वस्तु व्यवस्था है कि आपने जो कर्म के जैसे भाव किए उस जाति का आपको कर्म बनेगा और वो कर्म आपको वैसा फल रूप में खिलेगा भी खिलेगा बराबर है। समझ में आया द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य? चले आगे, चलिए यहाँ द्रव्य पाप और भाव पाप की चर्चा हमने की, पुण्य और पाप की, इसी के आगे अगला पैरा। परमार्थ थी अर्थात खरेखर वास्तव में पुण्य पाप अर्थात शुभाशुभ भाव आत्मा ने अहित करके तथा आत्मा ने क्षणिक अशुद्ध अवस्था से द्रव्य पुण्य पाप तो पर वस्तु से कहीं आत्मा नु हित अहित कर सकता नहीं। आम बराबर निर्णय दरेक ज्ञानी जीव ने हुए थे, आ प्रमाणे विचार करी सम्यक दृष्टि थी स्वद्रव्य न आलम्बन न बढ़ती जेतला अंश आश्रय भाव ने दूर करे थे तेतला अंश तेने विपराकता ने वृद्धि थाय थे आश्रय भावना कहवा में आये थे बराबर है। समझ में आया आश्रय भावना में क्या हुआ कि जितने अंशों में इस जीव को पता पड़ा कि मुझे मेरे अंदर कर्म आदि आ रहे हैं, तो जैसे जैसे इस जीव का ज्ञान हुआ कि ये कर्म आदि का आना क्या होता है आश्रय है, फिर उसके भेद जो द्रव्य आश्रय पापाश्रय जो भेद किए, ये आश्रय का एक उदाहरण तो हम सबको ही पता है, सात तत्व का, कौन सा सात तत्व का उदाहरण सबसे फेमस क्या है? नाव में पानी आना, बराबर सबको पता है। कि नाव में पानी आना मतलब क्या हो गया, ये पानी है मान लीजिए, बराबर ना, यहाँ तो सब अभी मान मान के चल रहा है। ये नाव है, यहाँ पर एक्स वाई जेड बैठा है, बराबर है, ये नाव है, वाई का मत जाना, खबर ना, ये नाव है यहाँ पर बैठा है, बराबर है। चलिए अभी जिसको आता है उससे नहीं, दूसरे नए नए लोगों से पूछते हैं, सात तत्व के नाम किसको नहीं आते हैं, ठीक है, सात तत्व के नाम किसको नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, तो सबसे जरूरी है हमें सात तत्व के नाम याद होने के लिए, बराबर है। पहला इंडेक्स से काउंट करेंगे, पहला जी, दूसरा तीसरा अश्व, चौथा बंद, पांचवा छठा दूसरा और सातवा। अब ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगा तो आपको हमेशा सात तक याद रहेंगे। जी किसे कहते हैं, जी मतलब है, अगर मेरी आत्मा है जी, तो यहाँ ये जो व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति की आत्मा क्या हो गई, जी, बराबर है। अब इसका जो शरीर है वो क्या है, अजी, बराबर है। ये व्यक्ति मैं हूँ, ये मान लीजिए कुछ है, ठीक है, ये कुछ है नाव चला रहा है, बराबर है। तो ये कुछ का आत्मा क्या हो गई, जी, शरीर क्या हो गया, अजी, बराबर है। अब क्या हुआ आगे, ये जो नाव है इस नाव में क्या हो गया, नाव आगे जाके पत्थर से टकरा गई और उसमें क्या हो गया, छेद हो गया, है ना, जैसे टाइटेनिक टकराया था ना, ऐसे नाव टकरा गई तो इसमें छेद हो गया, छेद हुआ तो क्या होगा, अरे नाव कहाँ चल रही थी, पानी में, आसमान में चल रही थी, पानी में चल रही है, तो ये पानी क्या हुआ, धीरे धीरे अंदर आया, पानी का आना आश्रव, हमेशा याद रखना आना आश्रव, पानी आया आश्रव। अब आया तो कहाँ आया, नाव में आ रहा है ना, आ रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, भर रहा है, क्योंकि पानी जब आ रहा है तो भरता जा रहा है नाव में, धीरे धीरे भरता जा रहा है। ये भरना, ये क्या हुआ, बंद, ये क्या हुआ, बंद, पानी का आना आश्रव, पानी का आना कर्मों का आना, या उदाहरण है पानी का आना आश्रव, पानी का भरना मतलब उतना, ये हुआ बंद। अब ये पानी भरा तो नाव क्या हुई, डूब जाएगी, बराबर है, नाव के अंदर पानी भरेगा तो नाव क्या होगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, डूबेगी, तो नाव डूबने लगी। अब नाव डूबने लगी तो इसको विचार आया किसको, कि क्या गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई, अब क्या करना, पानी निकालना कि छेद बंद करना, पानी अगर पहले पानी निकालोगे और छेद बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, आप निकालते रहोगे और पानी आता रहेगा, तो निकालने से पहले क्या करना है, छेद बंद करना है। तो पहले निकालने से पहले क्या किया, पहले फिर से छेद को बंद किया, तो ये जो बंद हुआ वो हुआ संवर, मतलब क्या हुआ, अब जो नया पानी है वो नया पानी का आना रुक गया, जो पानी भरा था वो भरा था, लेकिन जो नया पानी आ रहा है उस नए पानी का आना रुक गया, बराबर, वो हो गया संवर। अब क्या करना, अब छेद बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया, अब क्या करना, कि पानी ऑलरेडी अभी भरा हुआ है, क्या करना, अब इस पानी को धीरे धीरे निकालना, उसके पास उसके पास जो भी चीज थी, उसने मग्गा है जो भी था उसने उसको यूज किया और पानी को क्या किया, निकालना चालू किया, वो क्या हुई, निर्जरा हुई, बराबर, पानी को निकालना शुरू किया वो धीरे धीरे इसकी क्या हुई, निर्जरा हुई, और जब पूरा पानी निकल गया तो ये नाव क्या हुई, ऊपर आ गई, पूरा पानी निकल गया तो नाव क्या हुई, ऊपर आ गई, और क्या हो गया, याद रहेगा, अच्छा कौन ऊपर आया, हुआ नाव ऊपर आई, ऊपर कौन आया? ऊपर आया बराबर है। मोक्ष इसका हुआ, नाव का मोक्ष नहीं करना है, नाव का मोक्ष मत करना, मोक्ष इसका करना है इसे जीव का। यहाँ पे ये और लगा सकते हैं और जैसे ये जीव है, नाव क्या हो गई? अजीब। ये जो बैठा था वो जीव, नाव हो गई अजीब। पानी का आना हुआ आश्रव, बराबर पानी का आना आश्रव, पानी का भरना बंद, पानी का भरना बंद, उस छेद को बंद करना संवर, और भरे पानी को निकालना दूसरा, पूरा पानी निकला और ऊपर आना हो, बराबर है। सेम प्रोसेस इस जीव के साथ होती है। ये जीव मेरी आत्मा मेरे साथ में जो शरीर है वो क्या है? अजीव, बराबर जीव अजीब हो गए। मैं आत्मा मेरे साथ में शरीर है वो अजीब। मेरे अंदर जो कर्म आ रहे हैं वो हुए आश्रव, मेरे अंदर कर्म जो बंधे हुए हैं वो गए बंद। अब मैंने कुछ ऐसा किया, समय दर्शन जानकारी की प्राप्ति की, जिससे जो नए कर्म आ रहे थे वो कर्मों को मैंने रोक दिया, तो क्या हो गया? संवर। अब वो नए कर्म तो हमें रुक गए, लेकिन जो बंधे हुए कर्म थे उन कर्मों को धीरे धीरे सब के द्वारा मैंने निकाला, तो वो हुए निद्रा। और एक ऐसी अवस्था है जब मेरे अंदर के सारे कर्म समाप्त हुए तो मुझे हुआ बराबर है। ये सात तत्व है। अगर यहाँ संवर नहीं होगा और आप निद्रा करते रहोगे तो आपका मोक्ष कभी नहीं होगा, बराबर है। अगर मैं वेद बंद नहीं करूं और कर्मों की निद्रा करता रहूं तो कभी भी मेरा मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं यहाँ पे एक रुपया माइनस करता हूँ तो यहाँ एक रुपया प्लस भी होता है। मेरे पास 100 है, मैं डेली एक स्टन करता हूँ, डेली एक रन करता हूँ, तो आफ्टर हाउ मेनी डेज मेरे पास 0 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं जितना इक्वल कर, मैं जितना कम कर रहा हूँ उतना मैं अर्न भी तो कर रहा हूँ, तो मेरा तो इक्वलिटी सेम ही रहेगी, बराबर है। तो इसके लिए ये जो इसके बाद स्टेप बाय स्टेप है, वो स्टेप बिल्कुल बहुत जरूरी है। जैन दर्शन बहुत लॉजिक का दर्शन है, जितने सिद्धांत है आप समझे तो बहुत लॉजिकली, हमारा जो साइंस है जो गणित है बिल्कुल लॉजिक से चलता है, बराबर है। समझ में आया सात तत्व? हाँ। नाम एक बार फिर से, पहला दूसरा, तीसरा चौथा बंद, पांचवा छठा तीसरा सातवा मुक्त, रिवर्स में सातवा छठा पांचवा चौथा तीसरा दूसरा छठा। भावना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवी। लोक बोधि दुर्लभ और हर। आज हमने चर्चा आश्रव से की है, आगे की क्लास में फिर धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम एक वर्ष किया था सबको, ये भावनाएं जो है 12 भावनाएं, ये एक ही जगह नहीं है चढ़ाला में, ये बहुत जगह है, बराबर है। तो मैंने क्या बोला था कि आपको ये ढूंढना है कि 12 भावनाएं कितने कवियों के द्वारा लिखी गई है। मैक्सिमम आपको मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, इतनी आपको कोई होमवर्क चाहिए फ्रेंड्स के लिए, हमें मालूम होना चाहिए 12 भावनाएं। दौलत राम जी की भी है, मंगत राम जी की भी है, जयचंद जी की भी है, भूदन राज जी की भी है, किन किन की, कुंजन आचार्य की भी है, पटनंदी आचार्य की भी है, किन किन आचार्य की, पंडितों की 12 भावनाएं है, रिगल किशोरी की भी है, कुंजन जी भाजी की भी है, तो कितनी जगह 12 भावनाएं मिलती है आपको सेल्फ के लिए आपको मालूम होना चाहिए 12 भावनाएं कितनी है। दूसरा, 12 भावनाओं के नाम हम सभी को याद होने चाहिए, बराबर है। सात तत्व, 12 भावनाएं, 6 गर्भ, कषाय, गति, पाप, ये सब इतनी बेसिक चीजें हैं। 1 to 10 की जो काउंट है, 10-15 की काउंट है जैन धर्म की, वो हम सबको लर्न होने चाहिए, बराबर है। फिर एक बार वापस से आश्रव भावना बोलेंगे, फिर 10 तो हो गया आपका, लास्ट से आश्रव भावना एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे।
जो योगन की सफलाई पाते हैं आश्रव भाई, सब दुख पार धनेरे बुद्धिवंत सिनेरे रे।
समझ में आया आपकी क्लास? बराबर है। आश्रव भावना, कर्मों का आना, जो पुण्य पाप आदि जो कर्म जीव के साथ आ रहे हैं, वो कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। और इसे जीव को इस आश्रव को समझ के, आश्रव से रुकना नहीं है, आश्रव को समझ के संवर निद्रा की ओर आगे बढ़ना है। जब सात तत्व को पढ़ते हैं, सात तत्व में कितना हे है, कितने उपाधेय हैं और कितने जे है। सात तत्व में सब उपाधेय नहीं है, कोई तत्व जे रूप में है, कोई उपाधेय रूप में और कोई हे रूप में, हे मतलब थोड़े रूप में है। तो ऐसा हम इसको समझेंगे तो ये जो प्रयोजन भूत चलाते ना, सात तत्व प्रयोजन भूत, तो ये प्रयोजन भूत जो है, क्योंकि हमारा जो प्रयोजन है क्या है, मोक्ष रूपी जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन इन सात तत्वों के द्वारा पूरा होता है, इसके लिए उनको प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। तो वही प्रयोजन भूत तत्वों में जो आश्रव तत्व है, ये जो आश्रव भावना यहाँ पे ली, इसमें आश्रव बंध का स्वरूप हमने समझा, ये कर्म आदि जो हमको अभी तक मतलब इनके कारण हमने सुख दुख रूप जो अपना मान रखा था, वो वास्तव में कुछ करने वाले नहीं है। जब जीव ऐसा समझ लेता है तो स्वतः उसको एक तो क्या होता है, निरता आती है। जब हमें पता पड़ेगा ना कि ये मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं है, या मेरा इस चीज को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तो क्या होगा, एक निरता आती है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमें किसी से डर ही नहीं लगेगा। लेकिन उसमें क्या रहे, निडरता मतलब ये नहीं है कि हाँ बस मुझे निडर हो गया तो मैं किसी से भी भिड़ जाऊँ, ऐसा नहीं। यहाँ जो निडरता बताई वो स्वतंत्रता वाली बात नहीं है, यहाँ जो निडरता बताई वो ऐसा है कि अपने स्वरूप में मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाऊँ, उसके लिए आश्रव आदि को जानना बहुत जरूरी है। बराबर है। चलिए आज की क्लास में हमने आश्रव भावना को समझा, बारह भावना के नाम हम सभी को याद करने हैं, तो फिर आगे वाली क्लास में हम जो संवर निर्वा की जो भावना है उसके ऊपर हम अपनी चर्चा करेंगे। पहले संक्षिप्त में जिन्हानी स्तुति करते हैं। निज 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 में बताई अनंत प्रकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। Thank you.